नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। भगवंत मान की पंजाब सरकार उन किसानों के दबाव में है जो कुछ फसलों पर बोनस और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनकी 500 रुपए बोनस की मांग को मान लिया था, लेकिन कोई अधिसूचना जारी नहीं की। किसान बासमती और मूंग पर MSP के लिए अधिसूचना की भी मांग कर रहे हैं। किसानों ने मांग पूरी नहीं होने पर चंडीगढ़ में दिल्ली जैसा विरोध प्रदर्शन करने की धमकी दी थी। मान के साथ उनकी मुलाकात नहीं होने के बाद किसानों ने राजधानी के लिए एक मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। मुख्यमंत्री ने अब कहा है कि विरोध करना उनका अधिकार है, लेकिन मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे अच्छे नहीं लगते। उन्होंने ANI से बात करते हुए कहा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2 महीने बाद आप सोचने लगें कि मुर्दाबाद के नारे नहीं लगे हैं, चलो चंडीगढ़ चलते हैं। किसानों की अन्य मांगों में बिजली के लिए प्रीपेड मीटर नहीं, 500 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का मुआवजा, गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध हटाना, धान की बुआई का कार्यक्रम रद्द करना, निर्बाध बिजली आपूर्ति और मक्का और हरे चने सहित 23 फसलों पर MSP शामिल हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही कई महीनों की जंग तब खत्म हो गई जब मंगलवार को लंबे संघर्ष के बाद यूक्रेन के बंदरगाह शहर मारियुपोल में घिरे अजोवस्टल स्टील प्लांट में कई दर्जन घायल सैनिकों सहित 265 यूक्रेनी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेनी सैनिकों को उग्रवादी बताते हुए कहा, पिछले 24 घंटों में 265 आतंकवादियों ने हथियार डाल दिए और आत्मसमर्पण कर दिया, जिसमें 51 गंभीर रूप से घायल हो गए। मंत्रालय ने कहा कि जिन लोगों को चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है, उन्हें नोवाजोवस्क शहर के एक अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। मंगलवार को पत्रकारों द्वारा ये पूछे जाने पर कि क्या यूक्रेनी सैनिकों के साथ युद्ध अपराधियों या युद्ध के कैदियों के रूप में व्यवहार किया जाएगा, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता ने कोई जवाब नहीं दिया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दामित्री पेस्कोव ने कहा, पुतिन ने गारंटी दी कि उनके साथ प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार व्यवहार किया जाएगा। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार देर रात कहा कि 264 यूक्रेनी लड़ाकों को रूस नियंत्रित क्षेत्र में ले जाया गया, जिनमें 53 भारी रूप से घायल सैनिक शामिल थे। यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री गन्ना मलायर ने कहा कि वो एक्सचेंज प्रक्रिया के अधीन होंगे। पिछले महीने मॉस्को ने एक हफ्ते की घेराबंदी के बाद मारियुपोल पर नियंत्रण का दावा किया था, लेकिन सैकड़ों यूक्रेनी सैनिक रूसी सैनिकों द्वारा अवरुद्ध विशाल अजोवस्टल औद्योगिक क्षेत्र के नीचे भूमिगत सुरंगों में छिपे हुए थे। असम में भारी बारिश और बाढ़ के पानी का कहर जारी है। इससे प्रभावित लोगों की संख्या पिछले दिन से 4 लाख से अधिक हो गई है। मंगलवार को एक सरकारी बयान में कहा गया कि आपदा के कारण 3 और लोगों की मौत हो गई, जिससे कुल 8 लोग मारे गए। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बुलेटिन में कहा गया है कि प्रभावित लोगों की संख्या सोमवार को 20 जिलों में 1,97,248 से 26 जिलों में 4,03,352 तक पहुंच गई है। असम और पड़ोसी राज्यों त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर में भारी भूस्खलन के बाद बराक घाटी और दीमा हसाओ जिले के लिए रेल और सड़क संपर्क टूट गया था। भूस्खलन ने अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में भी कहर बरपाया, जिससे कई इलाकों में सड़क संपर्क टूट गया। 96,697 प्रभावित लोगों के साथ कछार सबसे अधिक प्रभावित जिला है, जबकि 88,420 और 58,975 लोग क्रमशः बाढ़ की चपेट में हैं। क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र गुवाहाटी ने बुधवार तक असम में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही अगले 5 दिनों तक पूरे राज्य में व्यापक बारिश की चेतावनी जारी की है। विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों के निवासी राहत शिविरों में करीब 40,000 लोगों ने शरण ली है। सोमवार से 11 तटबंध टूट गए हैं, जबकि 6 अन्य प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा घरों, सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँचा है। ASDMA बुलेटिन में कहा गया है कि दरांग जिले के गुवाहाटी और खारूपेटिया से जलभराव की सूचना मिली है। कोविड की वजह से 2 साल बाद आयोजित हो रही कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत फोकस का केंद्र रहा। इसी के साथ कांस 2022 की शुरुआत बेहद धूमधाम से हुई है। फ्रांस में कांस फिल्म महोत्सव के साथ आयोजित मार्चे डू फिल्म्स में भारत कंट्री ऑफ ऑनर है। 17 मई को ज्यूरी कॉल में दीपिका पादुकोण के सब्यसाची पोशाक ने सबका दिल जीत लिया। वहीं अब आर माधवन ने रिकी केज, वाणी त्रिपाठी, प्रसून जोशी, अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री भी हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और शेखर कपूर के साथ प्रतिनिधित्व किया। कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर भारत का बोलबाला साफ देखा जा सकता था। आर माधवन के फिल्मी करियर में कांस 2022 का खास महत्व है। अभिनेता अपने निर्देशन की शुरुआत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। उनकी आगामी फिल्म रॉकेट्री द नाम्बी इफेक्ट कांस फिल्म फेस्टिवल में विश्व प्रीमियर की ओर बढ़ रही है और अभिनेता प्रतिष्ठित मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। माधवन ने रिकी केज, वाणी त्रिपाठी, प्रसून जोशी, अनुराग ठाकुर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और शेखर कपूर के साथ कांस रेड कार्पेट पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए तस्वीरें खिंचवाई। दो हिंदू वकीलों ने मंगलवार को मथुरा में स्थानीय अदालतों में दो अलग अलग याचिकाएं दायर की, जिनमें से एक ने मुस्लिमों को शाही ईदगाह पर नमाज अदा करने से प्रतिबंधित करने की मांग की और दूसरे ने ये सुनिश्चित करने के लिए इसे सील करने के लिए कहा कि उस परिसर में कोई बदलाव नहीं किया जाए जहां हिंदू याचिकाकर्ता धार्मिक प्रतीकों का दावा करते हैं मौजूद हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।